नमस्कार भारत, 28 जनवरी सोमवार, मैं हूं आदर्श राठौर। हरियाणा और राजस्थान में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान आज। दोनों सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए बनी प्रतिष्ठा का विषय।
युद्ध तो जो जीतेगा वो इसके अंदर होगा सर।
जीन बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगे।
मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने किया जाति उन्मूलन का जिक्र। क्या यूपी में सपा बसपा गठजोड़ का है असर?
हमने सभी जातियों के सम्मेलन किए हैं बारी बारी से, कोई बुराई नहीं है। जाति के आधार पर अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए।
और पाकिस्तान से वसुतुल्ला खान की डायरी भी होगी।
हम जातिवाद और भेदभाव से अटे जिस समाज में पल के बड़े होते हैं, वहाँ हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारे रवैये के भले हमारे लिए कोई भी माने ना हो, लेकिन बाकी दुनिया शायद उन्हें कबूल ना करे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका ने वेनेजुएला को चेताते हुए कहा है कि यदि अमरीकी राजनयिकों और विपक्ष नेता खुआन ग्वाइदो के खिलाफ हिंसा हुई या उन्हें डराया धमकाया गया तो अमरीका ठोस कार्रवाई करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा है कि अमरीका वेनेजुएला के लोगों के अपने आप को निकोलास मादुरो के अवैध माफिया शासन से मुक्त करने के प्रयासों का समर्थन करता है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों ने खुआन ग्वाइदो को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दी है। इसी बीच सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहे सैनिकों को संबोधित करते हुए मादुरो ने कहा है कि वो साम्राज्यवादी ताकतों के तख्ता पलट के प्रयासों को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। मादुरो ने कहा, हम अपने 200 साल के इतिहास के सबसे अहम सैन्य अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपने सैन्य सिस्टमों, सभी सैन्य बलों, सभी सैन्य नागरिक यूनियनों की तैयारियों को जांचने वाले हैं ताकि कोई हमारी पवित्र भूमि को छूने के बारे में सोचने की भी हिम्मत न कर सके। वेनेजुएला शांति चाहता है। वेनेजुएला को शांति और शांति की गारंटी की जरूरत है। हमें अपनी तैयारी करनी होगी क्योंकि कोई भी कमजोर का सम्मान नहीं करता है। तेल समृद्ध वेनेजुएला इस समय गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा है और देश के हालात और खराब होने की आशंका है। फ्रांस में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ शुरू हुए अभियान ने राजधानी पेरिस में अपना पहला मार्च निकाला है। पुलिस का कहना है कि इस मार्च में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। दूसरी ओर येलो वेस्ट प्रदर्शनकारियों ने लगातार 11वें सप्ताह प्रदर्शन किए हैं। रेड स्कार्व्स कहे जा रहे इस अभियान ने हिंसा को रोकने का आह्वान करते हुए लोकतंत्र के समर्थन और क्रांति के विरोध में नारेबाजी की है। मार्च में शामिल एक प्रदर्शनकारी ने कहा, मैंने एक साल से किसी प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। मैं आज सुबह ही लियों से यहाँ पहुँचा हूँ क्योंकि अब बहुत हो गया है। 6 लोग प्रदर्शनों में मारे जा चुके हैं, पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, फर्जी खबरें फैल रही हैं, झूठ बोले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी मांगे की जा रही हैं। फ्रांस के गणतंत्र का अपमान किया जा रहा है। होंडुरस की राजधानी टेगुसिगाल्पा में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और दंगा रोधी पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। राष्ट्रपति खुआन ओरलांडो हर्नांडेज के कार्यकाल के एक साल पूरा होने पर ये प्रदर्शन किए गए हैं। राजधानी के अलावा देश भर में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की। अमेरिका समर्थक हर्नांडेज ने बेहद कम अंतर से राष्ट्रपति चुनाव जीता था। विपक्षी दलों ने उन पर चुनावों में धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं और उनके पद छोड़ने तक प्रदर्शन करते रहने का आह्वान किया है। बुर्किना फासो से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक पड़ोसी देश माली की सीमा के पास बंदूकधारियों ने कम से कम 10 लोगों की हत्या कर दी है। अरबिंडा कस्बे के पास हुए हमले के दौरान दुकानें लूट ली गईं और कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई। इस्लामी चरमपंथियों ने हाल के सालों में इस इलाके में कई बड़े हमले किए हैं। स्कॉटलैंड के शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ऐसी अनुवांशिक रूप से संशोधित मुर्गियां बनाई हैं जिनसे सस्ती प्रोटीन आधारित दवाएं बन सकेंगी और इनका एक दिन गठिया और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकेगा। मुर्गियों के अंडों का पहले से ही दवाओं बनाने के लिए, वायरस पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। हिंदी पट्टी के दो राज्यों की दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव में आज मतदान होना है। ये दो राज्य हैं हरियाणा और राजस्थान। मौसम सर्दी का है, लेकिन लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले हो रहे उपचुनावों की वजह से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। हरियाणा की जींद सीट के उपचुनाव को प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही साख की लड़ाई बना लिया है। तीन राज्यों में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस की लोकप्रियता का यहां पहला टेस्ट होना है। कांग्रेस के हैवीवेट उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला का दावा है कि यहां से बीजेपी के पतन की पटकथा लिखी जाएगी। यहां साख चौटाला परिवार की भी दांव पर है। सुनिए जींद से हमारे सहयोगी सत सिंह की रिपोर्ट।
सकरी गलियां, विकास का थमा पहिया और ढेरों समस्याएं। उपचुनाव के बाद जींद के वोटरों को दिक्कतों से निजात मिलेगी या नहीं, लेकिन उनके फैसले का इंतजार चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक है। माना जा रहा है कि इस साल होने वाले आम चुनाव के पहले ये उपचुनाव वोटरों के मूड का संकेत दे सकता है।
अभी हम दिल्ली से 130 किलोमीटर दूर जींद में हैं, जहां उपचुनाव होने जा रहा है। मुख्य तौर पर पांच बड़ी पार्टियां मैदान में हैं, जिनमें दो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस बीजेपी और एक क्षेत्रीय पार्टी नेलो है।
प्रदेश की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत ये है कि उसे 2014 की लहर में भी जींद में जीत नहीं मिली थी। यही वजह है कि इंडियन नेशनल लोकदल विधायक हरिचंद मिड्डा की मौत से खाली हुई सीट पर बीजेपी ने उनके बेटे कृष्ण मिड्डा को उम्मीदवार बनाया है।
युद्ध तो जो जीतेगा वो इस्कंदर होगा सर।
कांग्रेस ने उपचुनाव को साख का मुकाबला बना दिया है। कैथल से विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी रणदीप सिंह सुरजेवाला यहां से पार्टी उम्मीदवार हैं।
खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। जींद का उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के हक में आते ही 90 दिन में खट्टर सरकार गिर जाए।
चुनौती का अंदाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी है, इसीलिए वो और उनकी कैबिनेट पार्टी प्रत्याशी मिड्डा की जीत तय करने के लिए जोर लगाते रहे हैं। पिता जिस पार्टी से विधायक थे उसे चुनौती देने के सवाल पर कृष्ण मिड्डा कहते हैं,
मुझे अपने जीवन की शुरुआत करनी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इन चार सालों में विकास का पहिया दौड़ाया और साथ में विधायक जी के देहांत के बाद जो सत्र चला उसमें उन्होंने सारी वो शर्तें जो विधायक जी के वो जो प्रश्न थे उनको भी पूरा करने की बात को मानने का काम किया।
बीजेपी की दिक्कत बागी सांसद राजकुमार सैनी के उम्मीदवार विनोद अशरी भी बढ़ा रहे हैं। बगावत की तपिश इंडियन नेशनल लोकदल भी झेल रही है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी को चुनौती परिवार से ही मिल रही है। यहाँ अजय चौटाला के बेटे दिग्विजय निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो इनेलो उम्मीदवार उमेद रेहडू की उम्मीद कमजोर कर रहे हैं।
हम जींद की जनता को चौमुखी विकास देना चाहते हैं, जींद की बैकवर्डनेस को दूर करना चाहते हैं, यही सोच लेकर के हम जींद में आए हैं।
दिग्विजय के पक्ष में उनके बड़े भाई और हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला ने जमकर प्रचार किया। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे बड़े नेता भी जींद में कैंप करते रहे हैं। वजह यह है कि राह कांग्रेस के उम्मीदवार सुरजेवाला की भी आसान नहीं है। जाट वोटों पर उनके अलावा बाकी उम्मीदवार भी दावेदारी कर रहे हैं।
चारों राजनीतिक दल वो केवल जातीय विभाजन की राजनीति करते हैं और कांग्रेस बदलाव और विकास की, इसीलिए हमने कहा जीन बदलेंगे, जिंदगियां बदलेंगे।
हरियाणा विधानसभा के चुनाव इसी साल के आखिर में होने हैं। ऐसे में इस कड़े पांच कोणीय मुकाबले को जो भी उम्मीदवार जीतेगा उसे अधिकतम 9 महीने का ही कार्यकाल मिलेगा।
पूरे स्टेट की नजरें इलेक्शन रिजल्ट पर है, जो कि 31 जनवरी को आएगा। बीबीसी हिंदी रेडियो के लिए मैं सत सिंह जींद।
सत सिंह की रिपोर्ट आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय के सहयोग से। राजस्थान में अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर भी आज मतदान होना है। बीएसपी उम्मीदवार की मौत की वजह से यहां चुनाव टल गए थे। मॉब लिंचिंग की वजह से चर्चा में आए इस इलाके में जीत हासिल कर कांग्रेस राज्य में अपने विधायकों की संख्या 100 तक पहुंचाना चाहती है, वहीं विरोधी उसे 99 के फेर में फंसाए रखना चाहते हैं। सुनिए हमारे सहयोगी नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
यह उपचुनाव है लेकिन ना तो प्रचार का पिछले विधानसभा चुनाव जैसा शोर था, ना ही नेताओं ने कोई तूफानी दौरे किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो दिन पहले वहां सभा कर कांग्रेस को जिताने की अपील की है। बीजेपी में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया समेत कुछ वरिष्ठ नेता रामगढ़ का दौरा कर चुके हैं। इस चुनावी लड़ाई को बीएसपी के जगत सिंह ने थोड़ा दिलचस्प बना दिया है। वे पहले बीजेपी से विधायक थे लेकिन पार्टी ने जगत सिंह को टिकट नहीं दिया, अब वे बीएसपी से प्रत्याशी है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह अपने पुत्र जगत सिंह के लिए रामगढ़ का दौरा कर चुके हैं। वे इस क्षेत्र से अपने पुराने रिश्तों का वास्ता देकर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर मतदाताओं से समर्थन मांगा है। इस सीट से बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा चुनाव जीतते रहे हैं, मगर बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाना गवारा नहीं किया। वे हिंदुत्व पर अपने बयानों से चर्चित रहे हैं। आहूजा ने पहले पार्टी से इस्तीफा दिया लेकिन फिर तुरंत वापस लौट आए। रामगढ़ कथित गौ तस्करी और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के कारण सुर्खियों में रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटों पर सब्र करना पड़ा था। कांग्रेस अपने संख्याबल को 100 तक पहुंचाने के लिए इस सीट पर जोर लगा रही है। सियासी पंडित कहते हैं कि सीट के नतीजे से सरकार के वजूद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन परिणाम विपरीत आया तो सरकार की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। नारायण बारेट, BBC जयपुर।
उत्तर प्रदेश में जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठजोड़ किया है, तब से प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण की कामयाबी को लेकर कयासों का दौर जारी है। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि इन दोनों पार्टियों के साथ आने से सबसे ज्यादा असर बीजेपी के वोट बैंक पर होगा। ऐसे में जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में संत रविदास को याद किया और जाति व्यवस्था के उन्मूलन की बात की, तो इसे गठजोड़ का ही प्रभाव माना गया। लेकिन जाति आधारित राजनीति के इस दौर में प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी का क्या मतलब रह जाता है, खासकर तब जबकि खुद उनकी पार्टी भी बढ़ चढ़कर ऐसा करती है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
संत रविदास जी ने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे।
ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में कह रहे थे। उनके इस उद्बोधन से साफ पता चलता है कि जातीय वैमनस्य और जाति आधारित राजनीति से उन्हें पीड़ा पहुंचती है। लेकिन अभी कोई महीना भर ही हुआ होगा जब लखनऊ में उनकी पार्टी यानी बीजेपी ने कई दिनों तक अलग अलग जातियों के सम्मेलन आयोजित किए थे। इससे पहले भी ये सम्मेलन बीजेपी आयोजित करती रही है और अन्य पार्टियों की तरह यहाँ भी विभिन्न जातीय समूहों के आधार पर पार्टी संगठन में मोर्चे भी बने हैं। प्रधानमंत्री की इस टिप्पणी पर राजनीतिक दल उन्हीं की पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू कहते हैं,
प्रधानमंत्री जी ऐसे संवाद स्थापित करके लोकप्रिय बनने का प्रयास करते हैं, तो ये केवल उनका एक ख्याली पुलाव ही मात्र है। उनके पार्टी और संगठन या RSS तीनों संगठन के लोगों की ऐसी सोच है। अगर ऐसी सोच नहीं होती तो ये लोग लगातार हर वर्ग और हर बिरादरी का अलग अलग सम्मेलन क्यों कराते, और लगातार ये जितने भी जातिवादी दल हैं छोटे बड़े उनके साथ ये गठबंधन क्यों करते हैं।
राजनीतिक विश्लेषक प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन के असर के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि जातीय सम्मेलन और जाति आधारित मोर्चे लगभग हर पार्टी में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद बीजेपी का घिरना स्वाभाविक है। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जाति आधारित पार्टियों और उनके नेताओं के साथ गठबंधन भी किया था। जानकारों का कहना है कि न सिर्फ बीजेपी बल्कि सभी पार्टियों में पदाधिकारियों का चयन भी आमतौर पर जाति समीकरणों के आधार पर ही तय किया जाता है। चुनाव में उम्मीदवारों तक के चयन में जातिगत आंकड़ों की अहम भूमिका होती है। बीजेपी नेताओं के सामने अब दुविधा ये है कि वो पार्टी की इन गतिविधियों को भी गलत नहीं ठहरा सकते और प्रधानमंत्री की पीड़ा को भी नकार नहीं सकते। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इसका बचाव कुछ इस तरह करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार की जातीय राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। जाति समाज की एक सच्चाई है, जाति की सामाजिक सच्चाई को हम नकार नहीं सकते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जातियों के आधार पर विभेद किसी से न किया जाए, किसी से दुराग्रह न रखा जाए। हमने सभी जातियों के सम्मेलन किए हैं बारी बारी से, इसमें कोई बुराई नहीं है। जाति के आधार पर अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए।
बहरहाल प्रधानमंत्री की इस पीड़ा के बाद भारतीय राजनीति में जाति का महत्व तो खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन बीजेपी पर इसका कोई असर होता है या नहीं, इस पर पर्यवेक्षकों की निगाह जरूर लगी रहेगी। समीरात्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब समय है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दिलनवाज, क्या कहते हैं अखबार?
जी, राम मंदिर पर फिर टली सुनवाई, यही खबर आज अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर अलग अलग तरीके से है। दैनिक जागरण ने इसी पर लिखा है, रामलला को और करना होगा इंतजार। इसके अलावा अब सीबीआई के पीछे सीबीआई, यानी मामला है चंदा कोचर पर एफआईआर का, और जिस अधिकारी ने सीबीआई के ये एफआईआर दर्ज की थी उन्हीं का तबादला कर दिया गया है। अलग अलग अखबारों में इस खबर को भी अलग अलग तरीके से प्रकाशित किया गया है
जी।
और जिक्र है भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उस बयान का भी, जो कल उन्होंने एक समारोह में दिया और कहा कि चुनावी वादे पूरे ना हों तो जनता पिटाई भी करती है। और अखबारों ने इस शीर्षक को भी आज जगह दी है पहले पन्ने पर। और जैसा कि रात हम महसूस कर रहे थे, दिल्ली में थोड़ी सर्दी बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। और आज दैनिक भास्कर ने एक तस्वीर प्रकाशित की है शिमला में बर्फबारी का आनंद ले रहे पर्यटकों की, और ऊपर लिखा है कश्मीर हिमाचल समेत पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, पारा गिरने से दिल्ली में बड़ी ठिठुरन
जी।
इसके अलावा आपके सामने जनसत्ता है और इसकी पहली खबर जो नीचे एंकर माफ कीजिएगा मुझे दिख रही है वो है, और चार महीने में गायब हो गया 40 साल पुराना कचरे का पहाड़। इंदौर की ये खबर है जहां 100 एकड़ में जमीन खाली हो गई है, 90 एकड़ में पौधे लगाए जा रहे हैं और ये बड़ा कचरे का ढेर था, इसे साफ कर दिया गया है। तो ये एक सकारात्मक खबर अखबार ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। और एंटीगुआ से मेहुल चौकसी ने एक बयान जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे न्याय की उम्मीद है। और इसी पर जनसत्ता ने लिखा है, एंटीगुआ ने चौकसी को सौंपने से इनकार किया, और इसी के बाद जो है उनका बयान जारी हुआ है। तो ये खबरें आज के पहले पन्ने पर हैं अखबारों के। मेरे हाथ में द इंडियन एक्सप्रेस है और इसमें एक खबर है, मूव टू ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट जस्टिस मुरलीधर स्टार्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जजेस।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज। अब बात पाकिस्तान की। यहाँ पोलियो से बचाव के लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 3 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। अधिकारियों का मानना है कि इस साल उन्हें बीमारी के फैलने पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलेगी, लेकिन उनकी राह में कई चुनौतियां भी हैं। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए विदित मेहरा से।
ये 2 बूंद दवा एक खतरनाक बीमारी से रक्षा कर सकती है। 260,000 पोलियो कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों पाकिस्तान में घर घर जाकर ये दवा पिलाई। पेशावर के पड़ोस का ये गंदा नाला पोलियो वायरस के पाए जाने के लिए एकदम मुफीद जगह है। सुरक्षाकर्मी पोलियो टीम के साथ चल रहे हैं। बीते सालों में टीके का विरोध कर रहे चरमपंथियों ने दर्जनों पोलियो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी है।
साल 2012-13 में कई लोग मारे गए। हमें धमकी दी गई कि काम जारी रखा तो नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहें। मैंने काम जारी रखा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अब हालात काफी बेहतर हैं।
पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन का जाब्ता कानून,
वैक्सीन का विरोध ये कहकर कर दिया गया कि मुस्लिम बच्चों को हानि पहुंचाने के लिए ये पश्चिम की साजिश है। सोशल मीडिया के जरिए भी गलत जानकारी फैलाई गई। ऐसे कुछ लोग भी हैं जिन्होंने वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया।
लेकिन हमारे जो बड़े भाई आजकल ये बच्चे जो है वो बहुत शरारत करते हैं, इसलिए वो करते कहते हैं कि ये इसकी वजह है।
उन्हें समझाने के लिए पोलियो टीम ने उन्हें वैक्सीन पर लिखा एक धार्मिक आदेश दिखाया। तब उन्होंने कहा कि वे परिवार में सलाह करेंगे। पाकिस्तान में जागरूकता और सुरक्षा हालात में सुधार की वजह से 2014 के 300 से ज्यादा पोलियो के मामले पिछले साल घटकर केवल 12 रह गए। अधिकारी यहाँ बड़ी संख्या में बच्चों को बचाने में सफल हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस साल संभवतः पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आएगा, लेकिन अफगान सीमा से सटे ऐसे इलाके में बच्चों को वैक्सीन देना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लोग सीमा पार जाते आते रहते हैं, जहाँ सुरक्षा संबंधी चिंताओं की वजह से लोगों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने बीबीसी को बताया कि अफगानिस्तान में हालात चिंताजनक हैं।
ऐसे इलाके हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। 8 लाख बच्चों तक अभी दवा नहीं पहुंची है। तालिबान समेत सभी पक्षों को इस अभियान में शामिल करना होगा ताकि कोई भी बच्चा छूटने न पाए।
And make sure that no child is missed.
पेशावर के गंदगी वाले हालात को सुधारने की सख्त जरूरत है ताकि यहाँ के बच्चे स्वस्थ जीवन जी सकें। उम्मीद है कि कम से कम पोलियो के खिलाफ लड़ाई में प्रगति जारी रहेगी।
और अब पाकिस्तान से ही वसुतुल्ला खान की डायरी।
जनूबी अफ्रीका के डर्बन वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद ने जब जनूबी अफ्रीकी ऑलराउंडर एंडिलो कोयवायो की धुआंधार बल्लेबाजी पे झिल्ला के कहा, अबे काले तेरी माँ आज कहाँ बैठी है, क्या पढ़वा के आया है तू, मुझे यकीन है कि सरफराज को पता तक न चला होगा कि ये कोई जातिवादक जुमला है और इस पे चुल्ली पुकार भी मच सकती है। सरफराज बेचारा तो अपने अंदाज में एंडिलो की बल्लेबाजी की तारीफ करना चाह रहा था। जब हरभजन सिंह ने 2007 में सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एंड्रयू सिमंस को तूतू मैमे के दौरान बंदर कहा और फिर जुर्माना भी भरा, तब हरभजन के भी शान गुमान में ना होगा कि किसी को बंदर कहना ऐसी बात है कि इस पे इतना शोर मच सकता है। मसला यह है कि दक्षिणी एशिया के कल्चर में हम जिस माहौल में पलते बढ़ते हैं वहाँ गाली और उपमान के पैमाने जाहिर है कि दूसरी संस्कृतियों से मुख्तलिफ हैं। मसलन हमारे माहौल में काला कलोटा, काला भुजंग, कलवा, जितने भी काले सब मेरे बाप के साले जैसे शब्द और जुमले अक्सर हंस के टाल दिए जाते हैं, मगर अक्सर देशों में यही बातें किसी को भी लाल भभूका कर सकती हैं। हम जातिवाद और भेदभाव से अटे जिस समाज में पल के बड़े होते हैं वहाँ हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारे रवैये के भले हमारे लिए कोई भी माने ना हो, लेकिन बाकी दुनिया शायद उन्हें कबूल ना करे। चुनाचे जब रिएक्शन होता है तो हम सोचने लगते हैं कि हमने ऐसा क्या कह दिया कि तन बदन में आग लग गई। हम दक्षिणी एशिया के मर्द अगर खुश होते हैं तो बेतकल्लुफी के स्वभाव के इजहार में एक दूसरे को गालियाँ देते हुए गले मिलते हैं, मजाक करते हैं तो उसमें भी अश्लील इशारे यारी की निशानी समझे जाते हैं, और गुस्से में हो तो तब भी इसी शब्दावली और हरकतों से काम लेते हैं। इसमें कुछ भी हमारे नज़दीक अश्लीलता के दायरे में नहीं आता। बहुत से लोगों के नज़दीक अंगूठा दिखाने का मतलब हौसला अफजाई या खुशी का इजहार है, लेकिन करोड़ों ऐसे भी हैं जिनके नज़दीक अंगूठा दिखाना ठेंगा दिखाने के बराबर है। इसी तरह बहुत से समाजों में किसी अजनबी को आंख मारना इंतहाई बदतमीजी की बात है, मगर कई समाजों में इसे गर्मजोशी जाहिर करने की निशानी समझा जाता है। हमारे यहाँ मर्द का मर्द से गले मिलना जफ्फी कहलाता है, लेकिन यूरोप और अमेरिका की सड़कों पर यही जफ्फी राहगीरों के दीदे गोल गोल घुमाने का कारण बन सकती है। शायद वो आपको वो समझ रहे हों जो आप ना हों। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग किसी काम या सैर सपाटे के लिए बाहर जाना चाहते हैं उन्हें कोई अच्छी टूरिस्ट गाइड भी खरीद लेनी चाहिए, ताकि इशारों के नायों और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के बारे में पहले से कुछ जानकारी हो जाए और हम अपने लिए शर्मिंदगी का सामान बनने से बच सकें। आपने सुना तो होगा, डू इन रोम एज रोमन्स डू। इस मुहावरे को समझने और समझ के अमल करने की भी तो जरूरत है।
वसुतुल्ला खान की डायरी आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। और अब समय है साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी का।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, बला की गर्मी लेकिन जीतने के बाद ठंडक महसूस की शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, जिन्होंने खिताबी मुकाबले में दूसरी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल को 6-3, 6-2, 6-3 से हराया। उनकी जीत को शब्दों में बांधा भारत के पूर्व डेविस कप कोच नंदन बल ने।
उस प्रकार का टेनिस शायद ही हमने कभी देखा होगा, इतना कंट्रोल, इतना कॉन्फिडेंस, मौका ही नहीं दिया नडाल को। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कोई कोच अपने स्टूडेंट के साथ उसको प्रैक्टिस दिला रहा है। ये नडाल के लिए एक प्राइवेट लेसन था 2-2.5 घंटे का। अप्रतिम परफॉर्मेंस था जोकोविच का, कंप्लीटली फ्लॉलेस।
और अब समीक्षा, क्या आज का मुकाबला जीतकर न्यूजीलैंड एक दिवसीय सीरीज बचा पाएगा?
शुरुआत ही उनकी सही नहीं हुई, मोहम्मद शमी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और उसके बाद जब पिन ट्विंस आए कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल तो कोई जवाब नहीं था जिस तरह से उन्होंने चकमा दिया बल्लेबाजों को, और मुझे लगता है यही परेशानी रहेगी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए।
ये शब्द हैं क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन के, और बात सही भी है। भारत ने जिस अंदाज में न्यूजीलैंड को शुरुआती दो मैचों में हराया उसमें गेंदबाजों की बड़ी भूमिका रही। जिस पहले मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 8 विकेट से हराया उसमें न्यूजीलैंड 157 रन ही बना सका। दूसरे मुकाबले में भी न्यूजीलैंड 90 रन से हारा। वैसे कहने को तो दूसरे मैच में उसने 234 रन बनाए लेकिन जीत के लिए 325 रनों की तलाश में वो 40.2 ओवर में ही सिमट गया। अब हालात ये हैं कि अगर वो आज का मुकाबला नहीं जीता तो भारत सीरीज में 3-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेगा। ये भी आश्चर्य की बात है कि जो न्यूजीलैंड के तेज विकेट कभी बल्लेबाजों में खौफ पैदा करते थे वहां भारत के स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की जुगलबंदी छाई हुई है। इस जोड़ी ने जैसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर पाबंदी लगा दी है। 2 बार लगातार 4-4 विकेट झटक कर कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी गेंदों से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को नचा कर रख दिया है। उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है।
अभी गोल डालने में इतना कॉन्फिडेंट लगता है कि नहीं यार ये कैसे मार सकते हैं, तो हमेशा रहता है कि आउट कर सकता हूँ इनको। विकेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन मिडिल ओवर में, वनडे क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही दोनों लोग करते हैं चहल और मैं, और मेरे लिए भी अच्छा है, जितना विकेट लूंगा उतना ही अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस उतना ही आएगा।
कुलदीप यादव पिछले 5 मैचों में 15 विकेट हासिल कर चुके हैं। दूसरी तरफ शिखर धवन ने भी लगातार 2 अर्धशतक बनाकर अपनी खोई रंगत हासिल कर ली है। हिटमैन रोहित शर्मा ने भी पिछले मैच में 87 रन बनाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। रही बात कप्तान विराट कोहली की तो पिछली 4 पारियों में उन्होंने 43, 45, 46 और 104 रनों जैसी महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। शिखर धवन कहते हैं,
किसी एंड से अगर चौके मार रहा है कोई भी बैट्समैन, चाहे वो विराट मारा हो चाहे मैं मारूं, तो दूसरे बैट्समैन को बड़ी आसानी हो जाती है। तो हम ऊपर के टीम में इतना खेले हैं, अब 115 मैच में इन तीनों इकट्ठे ही खेले हैं सारे, तो अगर कोई ऐसा मोमेंट आता है कि भाई कुछ थॉट होता है वो कम्युनिकेट करते हैं फिर कि यार अच्छा ऐसा लग रहा है तो ऐसा कर सकते हैं बस।
और जब कप्तान खुद मोर्चा संभाले तो चिंता की क्या बात, सुनते हैं विराट कोहली को।
ऐसी सिचुएशन में मैं हूँ जहाँ पे टीम थोड़ी मुश्किल में है तो मैं जिता सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ, तो आई थिंक उस चीज से बहुत हेल्प मिलती है। जब आप मेंटली कन्विंस होते हैं तो फिर अपने आप जाके फील्ड पे परफॉर्मेंस होती है।
भारत अगर आज का मैच जीता तो कोहली का कद और विराट होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को उसके घर में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन रहा है। इससे पहले साल 2010 में धोनी की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराया था। जो भी हो दबाव तो अब न्यूजीलैंड पर ही है। कई बार किसी खिलाड़ी की खराब फिटनेस उसकी अच्छी फॉर्म पर भारी पड़ती है और वो विरोधी खिलाड़ी के लिए वरदान बन जाती है। कुछ ऐसे ही स्पेन की बैडमिंटन खिलाड़ी कैरोलिना मारिन के साथ हुआ जब वो इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में चोटिल होकर बाहर हो गई और भारत की साइना नेहवाल चैंपियन बन गई। जिस समय कैरोलिना मारिन चोटिल होकर कोर्ट से बाहर गई उस समय पहला गेम चल रहा था और वो 10-4 से आगे भी थी। जो भी हो इससे साइना नेहवाल को साल का पहला खिताब जीतने में आसानी हो गई। इंडोनेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग का खिताब गैर वरीयता हासिल डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोता को 21-16, 14-21, 21-16 से हराया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
अमरीका ने वेनेजुएला को चेताते हुए कहा है कि यदि अमरीकी राजनयिकों और विपक्ष नेता खुआन गुआइदो के खिलाफ हिंसा हुई या उन्हें डराया धमकाया गया तो अमरीका ठोस कार्रवाई करेगा। फ्रांस में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के खिलाफ शुरू हुए अभियान ने राजधानी पेरिस में अपना पहला मार्च निकाला है। पुलिस का कहना है कि इस मार्च में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। होंडुरस की राजधानी टेगू सिगाल्पा में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों और दंगारोधी पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। राष्ट्रपति खुआन ओर्लांडो हर्नांडेज के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर ये प्रदर्शन किए गए हैं। बुर्किना फासो से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक पड़ोसी देश माली की सीमा के पास बंदूकधारियों ने कम से कम 10 लोगों की हत्या कर दी है। स्कॉटलैंड के शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने ऐसी अनुवांशिक रूप से संशोधित मुर्गियां बनाई हैं जिनसे सस्ती प्रोटीन आधारित दवाएं बन सकेंगी और एक दिन इनका गठिया और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जा सकेगा। सऊदी अधिकारियों ने देश के सबसे अमीर लोगों में शामिल व्यापारी मोहम्मद हुसैन अल अमूदी को रिहा कर दिया है। इथियोपिया में पैदा हुए अमूदी को रिट्ज़ कार्ल्टन होटल में हिरासत में रखा गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। शाम 7:30 बजे दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।